शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है ड्रामा, ड्रामा। ड्रामा के बारे में बाबा हर मुरली में कई पॉइंट समझाते हैं। ड्रामा हो बहु रिपीट होता है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट भी है, ड्रामा न्यायकारी भी है, ड्रामा बिल्कुल सही है, ड्रामा सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर अर्थात इसमें सब कुछ है ना। जैसे कोई फिल्म होती है, ड्रामा होता है या कोई भी, ऐसे उसमें कॉमेडी भी चाहिए, ट्रेजेडी भी चाहिए, हंसाने वाले भी चाहिए, रुलाने वाले भी चाहिए, और विलियन भी होता है, खलनायक भी होता है, हीरो भी होते हैं। इसमें भी वैसे ही है, हो बहु इसी को ही तो कॉपी करते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, ड्रामा या जो भी, सब इस बेहद के ड्रामा को ही कॉपी करते हैं किसी न किसी रूप से। तो आज बाबा ने ड्रामा पर बहुत कुछ सुनाया है। न्यायकारी भी है, क्योंकि न्याय तो सबको मिलता ही है ना, जो जैसा करेगा वैसा जरूर भरेगा। इसलिए न कोई प्रश्न उठ सकते हैं और न ही कोई आश्चर्य खा सकते हैं, क्योंकि हूबहू है, और न ही कोई दुख करना है क्योंकि फिर रिपीट होना है, और न ही कोई चिंता करनी है क्योंकि सब कल्याणकारी है, सब अच्छा है। इसीलिए ड्रामा का ही ये सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहते ड्रामा भी एक बिंदु की समान है, बिंदु लगाया मन का भटकना बंद हो गया। ड्रामा आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये तीन बिंदु लगाओ तो देखो स्थिति कितनी ऊंची हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। तो आज बाबा ने इस पर बहुत कुछ समझाया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 5/11/2024 है। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। दुनिया वाले भी कहते जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, हो रहा जो होगा अच्छा होगा, लेकिन ये ड्रामा है इसलिए ये सब कह रहे हैं, और ये परफेक्ट है ये बाबा कहते तुम ही जानते हो। तो ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, तुम जानते हो ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? क्योंकि बाबा के पास आते थे बच्चे, अपना लौकिक जो भी उनका था वो भी बाबा को बताते थे। वैसे तो बाबा कहते थे शिव बाबा इन लौकिक बातों में नहीं जाते, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है लौकिक बातों का। लेकिन बाबा से जब भी कोई ऐसी बात पूछते थे तो बाबा जवाब भी देते थे, क्या करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी थे ना। तो प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? प्रश्न है, उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं बाबा से, बाबा हम धंधा करें? बाबा मना थोड़ी करेंगे धंधा नहीं करो, बाबा का जवाब देंगे हाँ क्यों नहीं करो, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो, अब आजीविका के लिए, पेट के लिए, परिवार के लिए तो धंधा तो करना होगा, कमाई तो करनी है। बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। कई प्रकार के धंधे हैं आजकल, तो न जाने क्या क्या हो रहा है, कितने फेक, कितने झूठे, और कितना कमा लेते हैं फिर पकड़े जाते हैं, फिर सारी की कमाई चट, ऐसे भी है। लेकिन रॉयल धंधा करो, एक तो सच्चाई का धंधा करो, रॉयल धंधा करो, हाँ, और जिसमें सचमुच सुख समाया हुआ है वो करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा, अब कौन सा होता है सबसे छीछी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते। बाबा के बच्चे ये धंधा नहीं कर सकते। जब बाबा ने ये मुरली चलाई, हाँ, उस समय भी कितने ऐसे बच्चे थे जब ज्ञान में चलना शुरू किया था और शराब का ठेका उठाया था, शराब का धंधा करते थे, तो बाबा के पास गए, बाबा हमारा तो यही धंधा है, उसमें कमाई तो बहुत होती है शराब के धंधे में। बाबा ने उनको बिल्कुल मना किया, कई उदाहरण है, मना किया, और कैसे वो बिजनेस को खत्म करके फिर वो शराब की जगह दूध का बिजनेस शुरू किया या और कोई शुरू किया जो श्रेष्ठ माना जाता है, शराब का धंधा छोड़ दिया। तो बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों बाबा ऐसा धंधा करने लिए मना करते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। अब शराब पीकर आएगा कोई घर में, आएगा पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, अब पेट के लिए है नहीं, और शराब खरीद करता है, शराब के लिए पैसा देता है, और गरीबी तो बढ़ती जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है शराब के धंधे से। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। अब ये श्रीमत है, हाँ, कोई ऐसा धंधा नहीं करो जिससे कोई विकार का आकर्षण हो। दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप को नहीं कहेंगे, बाप की नहीं कहेंगे, बाबा की तो है श्रीमत। रावण को फिर बाप नहीं कहेंगे, वो है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। आसुरी मत तो कहेगी ना जिसमें तुमको ज्यादा कमाई हो वो धंधा करो। अब सबसे ज्यादा कमाई तो शराब में ही होती है, बहुत धनवान बन जाते हैं, शराब का ठेका लेते हैं या दुकान खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं करो, तो कितना अंतर हो गया, कितना रात दिन का फर्क है। तो बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है क्या होती है ईश्वरीय मत। ये बाबा कहते तुम बच्चों को ही पता है और किसी को तो नहीं पता है। बाप मिलते ही हैं, हाँ, संपत्ति के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों को संपत्ति देता है, अभी शिव बाबा भी हम बच्चों को मिले हैं, तुमको कितना धनवान साहूकार विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए, रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है, दुनिया की गिरावट ही होती है रावण की बुद्धि से, रावण की मत से। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है, ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है, द्वापर युग से मिलनी शुरू हुई आसुरी मत, तो आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आए हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो, नई दुनिया में इतना जल्दी नहीं गिरते, धीरे धीरे। तो बाबा ने एक बार कहा था ना, सत्युग से त्रेतांत तक तुम उतरते हो, गिरते नहीं हो, धीरे धीरे उतरना होता है ना, एक एक जन्म उतरते हैं, कला थोड़ी कम होती है, ज्यादा तो नहीं कम होती है, लेकिन द्वापर से तुम गिरते हो। अब जैसे कोई सीढ़ी से गिरे, आप फिसल जाए मानो गिरे, तो फट 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 पर रहा कैसे गिरता जाए, धड़ धड़ और एकदम कहां नीचे पट पर आ जाएगा, फिर हड्डियां भी टूट जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तुम नीचे गिरते ही आते हो आसुरी मत से, नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो, गिरना कैसे होता है फिर चढ़ना कैसे होता है ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए, तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए, तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। भगवान के सिवाय और कोई श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता है, इसलिए तुम बाबा के पास आते हो श्रेष्ठ मत लेने के लिए। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है हर कल्प में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो, ऐसे नहीं कल्प में कभी चढ़ते कभी उतरते कभी चढ़ते उतरते, नहीं गिरते ही हो नीचे ही आते हो, पर चढ़ते केवल एक ही बार हो। तो बाबा कहते हैं फिर एक ही बार चढ़ते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है सब, तो बाप समझाते टाइम लगता है, अब इतने नीचे गिर गए हैं और फिर उसको एकदम ऊपर चढ़ना है तो टाइम तो लगता है, बदलने में टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट टाइम है, एकदम सही टाइम। कई बच्चे बाबा को कहे बाबा सर्विस नहीं होती है, बाबा सेवा नहीं होगी, बाबा कहते होगी जरूर होगी, और सत्युग तो जरूर तैयार होगा, इसीलिए उसकी चिंता नहीं करो, बस आप जो सेवा मिले वो करते रहो, ऐसे नहीं कि किसी कारण से सत्युग का बनना रुक जाएगा, वो तो अपने टाइम पर हो ही जाएगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट ड्रामा, बड़ा एक्यूरेट चलता है, अब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है, ड्रामा बहुत वंडरफुल है, बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है, बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस, परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है, कईयों को क्यों डिफिकल्ट लगता है, इतना ऊंचा पद पा रहे हैं तो कुछ तो मेहनत करनी है ना, तो कोई सहज थोड़ी हो सकता है, बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, वो तो सहज है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं, रावण पर जीत पानी होती है, सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है, अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर ही कल्प रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं, कल पहले भी पाया था रावण पर जीत, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप, भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आयो, शिव बाबा हाँ कहते आए हैं भक्ति मार्ग में भी, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को थोड़ा जानते थे, हाँ क्या जानते थे आत्मा के बारे में, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, हाँ इतना जानते थे, कहते थे चमकता है प्रकृति के बीच में अजब सितारा, आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे, शिव की पूजा भी करते थे लेकिन बाबा कहते जानते नहीं थे, क्योंकि दो बातें, एक है मानना दूसरा है जानना, तो मानना फिर जानना भी जरूरी है, केवल मानना तो नहीं है ना, कई लोग हमको हम लोगों को कहते हैं ना आप लोग तो नास्तिक हो, भक्ति वक्ति नहीं करते हो, आप लोग भगवान को नहीं मानते हो, व्रत ये सब कुछ नहीं करते हो, तो बाबा कहते हैं उनको कहो हम परमात्मा को, आत्मा को, इस संसार रचना को केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं। भगवान को हम केवल जानते नहीं है, हम मानते नहीं है, जानते भी हैं, उनके बनते भी हैं। तो जब ऐसे सुनते ना तो आश्चर्य खाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। ड्रामा विचित्र भी है, लिस्ट निकाल सकते हैं किसने लिस्ट भेजी है, ड्रामा क्या क्या है। एक्यूरेट है, न्यायकारी है, और वंडरफुल है, विचित्र है। बाबा कहते कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे, हे परम पिता परमात्मा, याद तो करते थे फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा की ऑक्यूपेशन को, न परमात्मा की ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज भी करा न सके, तुम क्या थे, क्या बनने वाले हो। हाँ, बाप के सिवाय तो कोई रियलाइज करा ही नहीं सकता। कोई का पार्ट ही नहीं है रियलाइज कराने का, महसूस कराने का कि तुम कितने ऊंचे थे। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, और तीसरी संप्रदाय है दैवी संप्रदाय। है वो सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। तो बाप कहते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। ये निश्चित है ड्रामा में, तो इस निश्चित ड्रामा को कोई भी टाल नहीं सकता, हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ न सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना, बाबा ने लौकिक में बहुत गीता पढ़ी है। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, कितने शास्त्र पढ़े, बाबा कहते कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसीलिए छोड़ते नहीं है। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं है ना। बेचेंगे तो लोग आकर्षित होकर खरीदते हैं ना, इतने बड़े बड़े शराब के दुकान चारों ओर लगे रहते हैं। किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं है। तो बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। वैसे भी धंधों के लिए कहते हैं सबसे ऊंचा व्यापार कौन सा है, हीरे जवाहरातों का व्यापार, और वो तो कोई बिरला ही करेगा, बिरला ही वो खरीदेगा। बाकी और जितने भी व्यापार है वो तो उनकी भेंट में तो बहुत छोटे हैं। तो इन सब धंधों में है नुकसान, सिवाय अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बोल जवाहरात का धंधा करते थे, बाबा लौकिक में जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसे विश्व का मालिक थोड़ी बने, चलो लखपति बन गए, परंतु अभी तो बाबा हमें पद्मा पद्म पति बना रहे हैं। तो बाबा कहते परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं, बाबा से जो हम व्यापार करते हैं, ज्ञान रत्न बाबा से लेते, इस व्यापार से क्या बनते हैं। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, क्या बनते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, इस धंधे से बनते हैं। सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं, ऐसे नहीं एक जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तुम भी समझते हो, बाबा कहते तो बिल्कुल ठीक है, हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तुम जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, कितनी नॉलेज मिली है बाप द्वारा, परंतु फिर दैवी गुण भी तो धारण करने हैं। खाली नॉलेज है में सुन करके चलो रट करके, बाबा कहते इससे तो नहीं तुम मालामाल बनेंगे, इससे तो नहीं भाग्यशाली बनेंगे, पर क्योंकि दैवी गुण भी चाहिए, फिर दैवी गुण भी धारण करनी है, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या जानते हैं कि हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है, शिव बाबा को किराए पर दिया है ब्रह्मा बाबा ने अपना मकान। ये मकान है ना शरीर, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फखर रहता है, ब्रह्मा बाबा को बहुत फखर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। सोचो तो सही कितना नशा होगा बाबा को कि हमने अपना मकान, शरीर रूपी मकान, शिव बाबा को, भगवान को किराए पर दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कई पूछते हैं ना इनका ही शरीर क्यों, और किसी के भी तन में आ सकते, लेकिन बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान इनको लेना ही नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में ऐसे ही नहीं प्रवेश किया, पहले बाबा ने, शिव बाबा ने बहुत तैयार किया इनको, बहुत तैयार किया। बाबा को पहले से जैसे वैराग आने लगा था, शिव बाबा की प्रवेशता तो बाद में हुई। तो ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है, कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी है मैंने अपना मकान शिव बाबा को दिया है किराए पर, परंतु फिर हंगामा भी कितना बचा। बाबा शिव बाबा प्रवेश हुए और शिव बाबा ने कहा अब पवित्र बनो, योगी बनो, तो कितना हंगामा हो गया, तो बाबा को कितना सहन भी करना पड़ा, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुडी में कब बाबा को कहते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को हंसी में क्या कहते हैं, बाबा आपका रथ तो मैं बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाबा कई बार सिंधी में कहावत कहते हैं, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। नहीं तो बाबा की इतनी ऊंची बिजनेस थी और कितना उनका नाम था, बाबूजी बाबूजी सब बाबा को कहते थे, ब्रह्मा बाबा को लेखराज बाबू के इतना उसको सम्मान देते थे, बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट था, दानी था, दान भी बहुत करते थे, इतना नाम था। और जैसे शिव बाबा की प्रविष्टता हुई नाम बदनाम हो गया, ये जादूगर है, ये सुरमा डालता है, ये पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कह दिया ये अपने आप को कृष्ण समझता है और इसको तो 400 रानियां मिली, अभी कहता है मुझे 16108 रानियां चाहिए, तो रानियां ये कृष्ण समझता है, कितनी गाली। और शिव और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को क्या कहते, देखो आज बाबा ने क्या कहा। अब तो बाप कहते सबसे जास्ती बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है, तो बाप कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, कितनी गाली मिली है शिव बाबा को भक्ति मार्ग में, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी खाओ। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं थी, माना लौकिक में तो नहीं मिली थी ना पहले, अब बारी आई है, रथ दिया है तो ये भी समझते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कितनी गाली मिली बाबा को, लेकिन बाबा की स्थिति नहीं ली। हाँ बाबा कैसे एक रस स्थिति में थे, क्योंकि ड्रामा तो बाबा को पूरा याद था। तो बाबा कहते रथ दिया है तो ये भी समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, ब्रह्मा बाबा से भी तुम तीखे जा सकते हो, बाबा कितना निरहंकारी भी है, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। इतने बच्चों के पत्र आते हैं, इतने ढेर पत्र आते थे बाबा के पास, फिर ईशु दादी, उन पत्रों में तो बहुत कुछ बातें होती थी, पर जो काम की बात होती थी या कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे है, वो खास अंडरलाइन ईशु दादी करती थी और वो बाबा को सुनाती थी। तो बाबा कहते परंतु इनके ऊपर तो मामला बहुत है, सारे यज्ञ के कितने मामले होंगे, इतने इतने सेंटर्स, इतने भाई बहने, इतनी कुमारियां, टीचर्स, न जाने क्या क्या, और उनके मामले बाबा के पास ही आते थे। तो इनके ऊपर तो मामला बहुत है, बहुत ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, चलो ड्रामा है, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है, थोड़ा फील तो होता है, देखो बाबा के बच्चे बनकर क्या करते हैं। अब बाहर वाले कुछ करते तो इतना नहीं फील होता, पर अपने बाबा के बच्चे बन करके और फिर ऐसे करे तो फिर तो होता ना, अरे बाबा का बच्चा बनकर ऐसे कर रहा है तो लगता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो फिर भी कुछ लेस जरूर आती है, माना जैसे सेक तो आता है ना, अभी आग है तो उसका सेक तो आएगा। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, कैसे लेस आता है, बाबा को क्या फील होता है। ये बच्चा ये पहले तो कितनी अच्छी सर्विस करता था, ये संग दोष में खराब हो गया। तो कोई ने किसको कुछ उसको कह दिया कुछ, अरे अरे ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, छोड़ दिया या कहीं और चला गया, तो संग दोष में खराब हो गया। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं तो लेस आ जाती है, थोड़ा लगता है सेक। उस समय ये नहीं समझते हैं कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, भूल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा लगता है कि ये क्या इसने किया तो आश्चर्य लगता है। तो बाबा कहते आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, तो उस समय ये नहीं समझते हैं कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, ये तो ड्रामा में नोंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। अब एक ने लिख दिया कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे ही है, ऐसे ही है, अभी जो बिचारी बांधेली है उसके पति सुनेंगे या उसका पिता सुनेगा तो वो विघ्न तो डालेगा ना। तो बाबा कहते हैं कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं, यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि तो नहीं सुनाते हैं, अभी हम श्री मत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। भले माया की युद्ध चल रही है, कोई बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अंत में विजय तो तुम्हारी ही होगी। ये तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही है, हम जरूर वहां पहुंचेंगे। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, चले जाएंगे सतयुग में, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे कि बाबा आपने हमें ये राज्य दिया है, बस चले जाएंगे और राज्य करना शुरू कर देंगे, इतना बाबा ने दिया थैंक्स भी नहीं देंगे। कई बार होता है ना, किसी को कुछ देते हैं और वो थैंक्स भी नहीं करता, बस अच्छे से लेके चला गया, वही धन्यवाद। तो कुछ ये भी एक शिष्टता होती है ना धन्यवाद कहने की, तो बाबा को भी हम थैंक्स नहीं देते हैं, भूल ही जाते हैं कि ये किसने हमको राज्य दिया है, भगवान ने दिया है, तो उनको थैंक्स भी नहीं करते। बाबा हाँ थैंक्स कब करते हैं उनको, जब द्वापर आता है। कैसे थैंक्स करते हैं बाबा को बताते हैं ना, मंदिर बनाते हैं, उनको हीरे जवाहरातों के मंदिरों में शिव बाबा को रखते हैं, तो ये थैंक्स देते हैं। तो बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, सत्युग में जाकर के थैंक्स नहीं देंगे, ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पाठधारी हूँ, ड्रामा में सबका पाठ नूंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है, ब्रह्मा बाबा का भी पार्ट है, शिव बाबा का भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात ही नहीं। लो, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने उड़ा दिया और क्या थैंक्स देना, ये तो बाबा का पार्ट है। अब जिसका ये पार्ट है, कर्तव्य है, तो उसको थैंक्स और ही देंगे। थैंक्स देने की बात ही नहीं है। हाँ, कई कहते हैं अधिकार रखते हैं, चलो अधिकार उनको थोड़ा बहुत दिया, वो समझते ये तो मेरा अधिकार है। हाँ, ये क्या थैंक्स देना, ये तो मेरा अधिकार है। तो कई तो जबरदस्ती भी छीन लेते हैं अधिकार समझ करके, थैंक्स की तो बात ही दूर। तो थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता न सके। जो भी आए बोलो, सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना होगा, तमो प्रधान तो बन गए, फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही ये है, मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं, मैं सुप्रीम गुरु हूँ। शिव बाबा बताते हैं, मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है, जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके। समझ तो लिया, परंतु याद रहे जो कोई को समझा भी सके। ये भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कई बार बाबा कहते हैं ना, गला ही घुट जाता है। हाँ, गला बंद हो जाता है, ज्ञान सुना ही नहीं सकते किसी को, अगर कोई विकार में गिरे भी तो। तो कोई गिरते हैं तो सारा ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, चट हो जाती है। तो माया वो कला भी और काया भी, रोगी भी बन जाते हैं, गुण भी खत्म हो जाते हैं। तो कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल, कला रहित रह जाती है आत्मा। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। पहले से भी ज्यादा गिरते हैं, ऐसे भी है, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है, तुम जन्म जन्मांतर वैशाले में रहे हो, हजारों पाप करते आयो। सोचो तो सही, 63 जन्म, एक जन्म में कितने पाप किए, तो 63 जन्मों में कितने पाप किए होंगे। तो बाबा कहते हजारों हजारों पाप करते आयो, सबके आगे कहते भी हो, सब देवी देवताओं के आगे जाकर क्या कहते हैं, हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, जन्म जन्म के पापी हैं। कहते आए ना भक्ति मार्ग में, तो ऐसे ही कहते हैं, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है। पाप आत्मा बने, फिर पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर पाप आत्मा बने, फिर बनना है। बाबा कहते ये नॉलेज तुम बच्चों को मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता ही है ना। अब जो बाबा का फुल टाइम सेवा करते हैं और जो दूसरे परिवार में रहते हैं और जिम्मेदारियां बहुत है, तो फर्क तो है, वो इतना नहीं समझा सकते हैं परिवार वाले, क्योंकि उनके ऊपर झमेले बहुत है और मामले। और जो है ही फुल टाइम डेडिकेटेड बाबा की सेवा में, तो वो तो बहुत सहज समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो प्रवृत्ति वाले जिनके ऊपर और मामले हैं, वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। अब कोई कहे बाबा मैं छोड़ दूं सब और यहीं आकर के रहूं, तो बाबा कहते ऐसे तो हो ही नहीं सकता, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाबा खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे काम, चलो बिठा भी दे बहुत मकान बना है फिर करेंगे क्या, काम भी तो चाहिए ना, तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है, शिव बाबा को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा हुआ था, शिव बाबा को पढ़ने की दरकार नहीं। मेरे लिए तो कहते हैं, शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं, गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि बाप में क्या नॉलेज है, चलो कह दिया भगवान ज्ञान का सागर है, लेकिन क्या ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है उनमें, बाबा कहते ये नहीं जानते। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, ये बाप जानते हैं, वो हमको देते हैं। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है, कैसे अनादि है, हर कल्प कल्प वही निकलते हैं शास्त्र, तो अनादि है, तो भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं अभी दूसरा प्रश्न, जैसे ये ओम शांति भवन बना था तो ये तो पहाड़ था, पूरा पहाड़, पांडव भवन के सामने ये पहाड़ जो ओम शांति भवन है, तो कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे। अब एक बाप दादा से पूछा था किसी ने ये प्रश्न, जब ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ, कैसे ये पहाड़ तोड़ करके यहाँ इतना बड़ा ओम शांति भवन बना, तो बाबा से पूछा, बाबा इतना बड़ा पहाड़ था तो ये फिर अगले कल्प में फिर ऐसे ही होगा, तो देख बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रील है ना, अब वो रील में एक बार जो बात आ गई शूट हो गई, वो अगली बार जब वही रील बजेगी तो वही फिर होगा ना, फिर वही पहाड़ होगा, हाँ फिर वही टूटेगा, फिर वही हॉल बनेगा, ऐसे फिल्में भी ऐसे ही बनती है। मैं एक छोटा उदाहरण देती हूँ, अमेरिका में हम गए थे तो वहाँ वॉशिंगटन या लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, हॉलीवुड तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े थिएटर्स हैं जहाँ पर शूटिंग होती है, तो एक जगह हम गए थे तो इतना इतना बड़ा था, बात मत पूछो, जबरदस्त, इससे भी बहुत डबल ट्रिपल इतना बड़ा हॉल था, और वहां हमको कहा एक खड़े रहो रेलिंग पर पकड़ के रखो, और फिर कहा डरना नहीं डरना नहीं, फिर क्या किया एक आवाज हुई जोर से, हम लोग डर गए इतनी आवाज हुई, तो एक बिल्डिंग गिरी, फिर दूसरा जोर से आवाज हुआ, फिर फलाना एक व्यक्ति वो आग लगी उसको, वो नीचे गिरा आग से, फिर वो तीसरा कुछ हुआ, ये गिरा वो गिरा वो गिरा, लेकिन बार बार वो गाइड कहे डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं, अभी क्या गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, और बिल्कुल रियल लग रहा था, और फिर लास्ट में एक ऐसा आवाज हुआ सब वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया, तो अंत में उसने क्या कहा, आप लोग क्या समझते हो जब ऐसी फिल्में बनती है इतना सारा विनाश होता है तो ये सच में थोड़ी होता है, ये सब नकली है, सब नकली है, फिर वापस आ जाता है, अब वो कैसे करते होंगे वो पता नहीं, लेकिन ऐसी शूटिंग होती है, कुछ भी नहीं खत्म होता है, कुछ भी नहीं टूटता, अभी वो व्यक्ति को मार डाला मर गया, अगले फिल्म अगले वो जो होगा शो तो उसमें वापस से जीता हो जाएगा, है ना, तो ये सब ड्रामा इसी को ही बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ तो कहाँ चला गया, हाँ बाबा कहते हैं बाबा कुछ भी शास्त्र आदि पढ़े नहीं है, ये शास्त्र आदि पढ़ा है, तो बाबा को कहते हैं नॉलेजफुल, तो नॉलेजफुल है बाबा। हाँ कहते पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना, शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं फिर अपने समय पर वही बनते हैं, वही शास्त्र बनेंगे जो कल्प पहले थे, वही वापस आएंगे शास्त्र। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना, शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करता वो तो क्या क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, और तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो बाबा सुनाते हैं वही याद करते सब, वो शास्त्र जो कोई रट करके वो नहीं सुनाते, वो अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शास्त्रों ने इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है, हाँ लाखों वर्ष का कल्प तक इतना बड़ा गपोड़ा है, जो कब स्मृति में आ भी न सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ऐसे कहते हैं भगवान ने वाच, मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें है नहीं, ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही ये। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं, शिव बाबा ही एक सच्चा सतगुरु है, क्योंकि वही सबकी सदगति करते हैं। बस स्थापना करने वाले को भी गुरु कह देते हैं, धर्म पिता ही जो आए को प्रिसेप्टर कहते हैं, तो गुरु कह देते हैं, परंतु गुरु वो जो सदगति दे, ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं। जो धर्म पिता आए तो उनके पीछे उन धर्म की आत्माएं भी और ही सब नीचे आती है, वापस तो नहीं ले जाते, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की गाई गई है, वापस ले जाने वाला केवल एक शिव बाबा, इसलिए बारात भी उनकी गाई गई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है, कहां वो सूक्ष्म वतन वासी शंकर और कहां वो मूल वतन वासी शिव बाबा, दोनों एक को एक कैसे हो सकते हैं। ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन बच्चे ठहरे ना, तीन बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो कि इनको एडॉप्ट किया है, तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा। ऊंचे पे ऊंच है बाप, बाकी ये है उनकी रचना। कितनी ये समझने की बातें हैं, कितनी समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर, 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है, एक सतगुरु बाप की श्री मत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। वरदान बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे, कौन सा, कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए क्या होगा ये संकल्प नहीं आए, तो क्या फौरन आए संकल्प, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बीत गया अच्छा हुआ, जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह, ड्रामा में पक्का पूरा निश्चय है तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे, अगर ड्रामा पर पूरा निश्चय नहीं तो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकते। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा सदा ठीक रहता है। किसका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है? जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, आज 5 तारीख है। सफलता मूर्त बनो के अंतर्गत आज का अव्यक्त इशारा, सेवा की सफलता का साधन निर्माणता है, नम्रता है। सेवा की सफलता का साधन निर्माणता है। निर्माण बन झुकना, ये कोई छोटा बनना नहीं है। निर्माण बन झुकना ये छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। सफलता के फल संपन्न बनना है। बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्री मत के अनुकूल हो। श्री मत के सिवाय और कोई बात बुद्धि में न आए। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी। जो निर्णय होगा वो भी सत्य और सफलता वाला होगा। कब? जब बुद्धि में बाबा की स्मृति हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे। ऑल डबल फॉरेनर्स विल रिमेन सीटेड। आफ्टर मेडिटेशन आई विल अनाउंस द प्रोग्राम।